मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 22 मार्च 2017 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अलीशा बानो, आप कटनी मध्य प्रदेश से हैं, दीपक कुमार साहू, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और सुजीत चौरसिया, आप औरंगाबाद बिहार से हैं। तो अलीशा, दीपक और सुजीत, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज एनालिसिस की। मुझे सच पूछे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा और मैं इस बात को लेकर बेहद खुश हूं कि मुझे अच्छा लगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पहेली बुझा रहा हूं। अच्छा इस बात का लगा दोस्तों कि कल के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने दो तब्दीलियां की थी। हालांकि वो जो बदलाव थे वो बहुत ही छोटे से बदलाव थे, इसी से जुड़े हुए बदलाव थे, लेकिन जानबूझकर मैंने ऐसा किया था। और उसमें एक बदलाव तो मैंने ये किया था कि आप लोगों को डीडी न्यूज के बारे में स्पेशली अलग से मैंने बताया, उस पर फोकस किया। कहता तो मैं आ रहा था लेकिन उस पर कल मैंने कुछ अलग से बात की। दूसरा बदलाव कल मैंने ये किया था कि जो परसों का एक टॉपिक था मालदीव, उसको लेकर के मैंने कल उस पर बात की और बताया कि परीक्षा के लिहाज से आप उस क्लिपिंग्स का जो एक दिन पहले डाल दी गई थी उसका कैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने जानबूझकर अपने लेवल पर बदलाव किए थे। हालांकि ये छोटे ही बदलाव थे लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होने वाले हैं। मुझे खुशी इस बात की है जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की दोस्तों, कि मेरे बहुत से आप सब प्यारे साथियों ने उन दोनों बदलावों को बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया और उसके पक्ष में अपने तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए। सच पूछिए तो मैं ईमानदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं फ्रेंड्स कि मैं ये टेस्ट करना चाह रहा था। आपने देखा होगा कि कल मैंने कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं कुछ बदलाव कर रहा हूं। नो, इशारे में जरूर मैंने बात कह दी होगी लेकिन मैंने सीधे तौर पर नहीं कहा। और न मैंने आपसे यह कहा था कि आपको यह बदलाव कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आप ये कहते भी ना कि सर हमें यह बदलाव अच्छा नहीं लगा तो भी मैं पिंड छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि जो चीज आपके लिए जरूरी है वो मुझे करनी ही है, चाहे फिर वह गोली कड़वी क्यों ना हो। अगर आपकी बीमारी के लिए, आपकी सेहत के लिए मुझे कड़वी दवाई भी देनी पड़े तो एक ईमानदार और शुभचिंतक डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसा करना चाहिए और मैं करूंगा। इसलिए मैंने आपसे आप लोगों की राय भी नहीं मांगी थी और इसीलिए कुछ और ज्यादा खुशी हो गई कि मैंने राय नहीं मांगी थी लेकिन आप लोगों ने राय दी और बड़ी पुख्ता राय दी, बड़े खूबसूरत सलाहें दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मुझे अच्छा क्यों लगा? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरी तारीफ की। नो, नॉट एट ऑल। आप सब, मुझे मालूम है कि आप सब लोगों का बहुत स्नेह मेरे प्रति होता है, उससे भी बड़ी बात है कि आप सबका बहुत सम्मान मेरे प्रति होता है और वह स्नेह और सम्मान केवल आप लोगों के ईमेल लिखने में ही नहीं झलकता है बल्कि जिनसे भी फोन पर कभी बात हो जाती है या कभी मुलाकात हो जाती है तो उनकी चेष्टाओं और उनकी चेहरों तक से वो सम्मान और स्नेह झलकता है। इससे मुझे खुशी नहीं हुई। मुझे सच पूछिए तो खुशी दो बातों से हुई। पहला तो यह है कि आप सबने उसे आइडेंटिफाई किया कि नहीं, यह बदलाव है। पहली बात, आइडेंटिफाई करने की खुशी। दूसरा यह कि आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह प्रतिक्रिया आपके सतर्कता को व्यक्त करती है, अलर्टनेस को व्यक्त करती है कि आपने उसे पकड़ लिया, आप अलर्ट हैं। और केवल अलर्ट ही नहीं है बल्कि आप मुझे सूचित भी कर रहे हैं। इससे होता क्या है मित्रों, जो अक्सर मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को कहता हूं कि देखिए, देने वाला अपनी जगह महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो ले रहा है। अगर लेने वाला सतर्क है, लेने वाले में ऊर्जा है, तो देने वाला उससे ज्यादा सतर्क होकर के, उससे ज्यादा ऊर्जावान होकर के उससे और कई गुना ज्यादा देता है। तो लेने वाला कम महत्वपूर्ण नहीं होता। यदि आप लोग इसी तरह की सतर्कता बरतते रहेंगे, इसी तरह के फीडबैक देते रहेंगे, अपनी जरूरतें बताते रहेंगे, लगातार एक जीवंत संवाद एकेडमी के साथ बनाए रखेंगे, तो डेफिनेटली देने वाला यानी कि जो मैं हूं और एज ए होल एकेडमी है वो और ज्यादा सतर्क रहेगी, उसमें और ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा और वह और भी ज्यादा से ज्यादा आप सबको देने की कोशिश करेगी। तो मेरी जो खुशी जो हुई या कह लीजिए कि जो मेरे जो खुशी का जो रहस्य है मित्रों वह यह है, राइट। तो आइए अब मैं न्यूज एनालिसिस पर आता हूं। दोस्तों सबसे पहले फिर से मैं आपको डीडी न्यूज की याद दिलाना चाहूंगा और धीरे धीरे आप डीडी न्यूज को अपनी आदत बना लें। और कल के डीडी न्यूज में आपको फिर से दो बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें एक तो अयोध्या विवाद को लेकर के है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में, ये रेडियो न्यूज में भी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जस्टिस हैं केहर साहब, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि देखिए कि ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद बनाम बाबरी मस्जिद का जो मामला है ये मूलतः धर्म और आस्था का मामला है। ज्यादा अच्छा होगा कि इसे आप लोग आपस में बातचीत के जरिए सुलझा लें। हाँ, अगर आप लोग जरूरी समझें तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें मध्यस्थता करने को तैयार है, जिसमें वो खुद इन्वॉल्व होने के लिए राजी हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों कुछ अखबारों ने इंडिकेट भी किया है कि ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का पहला ऐसा कदम है, पहली ऐसी घटना है, उदाहरण है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अदरवाइज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल कानून के आधार पर, जो भी नियम कानून है और उसके सामने जो साक्ष्य है उनके आधार पर अपना फैसला देती है। इसलिए आपने देखा है कि कानून के लिए जो एक हमारे यहां जो एक प्रतीक बनाया गया है उसकी आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, यानी कि वो किसी का पक्ष नहीं लेती। हालांकि वो तटस्थता का प्रतीक है, यानी कि जो कानून कह रहा है, जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर वो अपना निर्णय देती है, यानी कि उसे निर्णय सुनाना होता है। लेकिन यहां वो निर्णय न सुना करके वो आस्था और धर्म को केंद्र में ला करके आपस में समझौता करने की बात कर रही है, सुलझाने की बात कर रही है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक घटना आपको मैं परसों की बताना चाहूंगा जो कल के अखबारों में आई थी और आपको मालूम भी होगा, कल मैंने उसकी चर्चा नहीं की थी और मेरे दिमाग में होती, मैंने नोट कर रखा था कि उस पर मैं चर्चा करूंगा। और वो थी कि जो उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने अभी जो गंगा यमुना नदी के बारे में जो एक डिसीजन दिया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये भी एक तरह का माइलस्टोन डिसीजन है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो नदियां हैं इनका भी एक वैधानिक व्यक्तित्व होता है। सोच करके देखिए कि ये भी एक तरीके से ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई एक जीवित व्यक्ति होता है। सोच करके देखिए, वो नदी के बारे में ये बात कह रहे हैं, गंगा और यमुना के बारे में ये बात कह रहे हैं कि उनकी एक जीवंत आइडेंटिटी है और अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाता है तो नदियां भी अपने नुकसान के अगेंस्ट केस दायर कर सकती हैं। दोस्तों इसी तरह की घटना एक और पहले हो चुकी है, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि शायद न्यूजीलैंड का नाम आया था, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड में, हाँ, कि न्यूजीलैंड में भी इसी तरह का एक निर्णय दिया गया है कि वहां की भी जो नदी है उसको एक जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। मित्रों ये दो घटनाएं कंटिन्यूअस घटी हैं, इनको जोड़ करके देखिए, क्योंकि सिविल सर्विस में क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं कि किस तरीके से एक हाई कोर्ट है दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। अब वो क्या इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है या जो न्याय लेने की जो पैरामीटर्स हैं, क्या उस पैरामीटर में बदलाव आ रहे हैं? क्या सही मायने में अब न्याय को भी एक शुष्क केवल कानूनी पद्धति न मान करके एक व्यावहारिक और एक सामाजिक पद्धति के तहत लिया जा रहा है? व्यावहारिक और सामाजिक पद्धति। व्यावहारिक पद्धति किस रूप में? कि आप आपस में सुलझा लीजिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को सुलझा लीजिए, भैया व्यवहार अपना ही, अदरवाइज देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट तो मालिकाना हक का ही फैसला दे सकता है कि भाई इस जमीन पर किसका मालिकाना हक है। लेकिन क्या मालिकाना हक के माध्यम से आस्थाओं को संतुष्ट किया जा सकता है? जिस देश के लोगों के छोटे छोटे नाटक में या फिल्म में छोटे से किसी सीन को लेकर के आस्थाओं को चोट पहुंच जाती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अपनी आस्थाओं के विरुद्ध मानकर चुपचाप नहीं स्वीकार करके चुपचाप बैठ जाएगी? अंततः समस्या तो नहीं सुलझेगी? लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किसी लम्हे में कुछ हो गया था और सदियां उसकी सजा भुगत रही, तो कब तक की सदियां सजा भुगते? कभी न कभी तो उनका हल निकलना चाहिए। तो वो हल कैसे निकलेगा? एक व्यावहारिक स्तर पर निकलेगा जहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मतलब इसको थोड़ा सा गौर करने की बात है और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हाई कोर्ट उत्तराखंड में क्या कह रही है कि नहीं, ये एक लिविंग आइडेंटिटी है, एक जीवित है। अब आप सोच करके देखिए कि जो भारतीय दर्शन है, दोस्तों ये निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सिविल सर्विस के लिए देखिए, हम तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हैं या जिसका कहा जाता है कि लिखकर अभ्यास किया जाए, अतिरिक्त रूप से तैयारी किया जाए, तो इसी तरह से टॉपिक्स हम चुन सकते हैं। आप देखिए ना कि भारतीय जीवन पद्धति को देखिए तो वो तो पूरी प्रकृति को एक जीवंत रूप में ही स्वीकार करती है। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी संसद में जाने से पहले उनकी सीढ़ियों में झुककर प्रणाम करते हैं। मैंने खुद ही अपनी आंखों के सामने देखा जब लता मंगेशकर जी भारत दिल्ली के विज्ञान भवन में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने आई थीं, उस समय उन्होंने स्टेज पर चढ़ने से पहले स्टेज को प्रणाम किया था, चप्पल उन्होंने नीचे ही उतार दी थी। बहुत से ऐसे कलाकार आज भी होते हैं जब नृत्य के लिए या परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो स्टेज को प्रणाम करते हैं। तो क्या वो तो जीवंत आइडेंटिटी ही मानते हैं? और हमारे यहां तो गंगा क्या है, मैया ही है। आज से नहीं, शुरू से है, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई, वो चुनरी चढ़ा रहे हैं गंगा मैया को, दीप दान कर रहे हैं। हमने तो माना ही उनको है, नगाधिराज को पिता मान लिया क्योंकि वो पिता के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, और गंगा को मां माना क्योंकि गंगा के रूप में वो हमारा पोषण करती हैं, हमें जल देती हैं, उन्हीं के जल की सिंचाई से अनाज उत्पन्न होता है जिससे हमारा पेट भरता है, तो गंगा मैया हमारा पेट भर रही है, तो हमारी मां हो गई। तो आप देखिए कि जो भारतीय दर्शन है उसने किस तरीके से प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित किया है, जो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो दोस्तों यहां आपको इन दोनों टॉपिक में, जो दोनों टॉपिक का मतलब है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो हाई कोर्ट ने कहा, इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश दिखाई दे रही है, भारतीय दर्शन की व्याख्या की गुंजाइश, यहां तक कि फोर्थ पेपर में जो एथिक्स का है उसकी गुंजाइश और निबंध की गुंजाइश, ये तीनों पेपर्स की संभावनाएं मुझे इन दोनों टॉपिक में दिखाई दे रही है। तो उसको आप देखिएगा। और इसमें अयोध्या विवाद पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दूरदर्शन न्यूज में था, और दूरदर्शन न्यूज में ही जो दूसरा टॉपिक लिया गया था वो स्वच्छता मिशन को लेकर के था कि स्वच्छता मिशन के तहत अभी क्या क्या काम किए जा चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसमें बताया गया था। और आपको मालूम है कि स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2016 में तो बाकायदे फोर्थ पेपर के तहत स्वच्छता मिशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें वो दे दिया है कि जैसे प्रभावी व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों को समझाने बुझाने का योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों, दूरदर्शन न्यूज को आप लोग प्लीज अपने दैनिक प्रिपरेशन जो आप करते हैं सिविल सर्विस का, उसका हिस्सा बना लें। अब दोस्तों दो तीन खबरें और आकाशवाणी न्यूज में थी। एक तो आपने देखा कि संसद में अक्सर ये हो जाता है कि संसद का कोरम पूरा नहीं हुआ है। कोरम पूरा नहीं होने का मतलब है कि आप कोई भी बहस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी पार्टी के लोगों को तो कह ही सकते हैं कि भैया संसद में आइए बैठिए। तो यहां आप एक चीज देखते हैं कि कैसे जनता है अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजती है, और इसीलिए भेजती है कि वो संसद में जाए, वहां बहस करें, हमारे लिए कानून बनाए। लेकिन संसद कितनी उपेक्षित हो जाती है वहां जाने के बाद, हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके से उससे विमुख हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहां और भी बताऊंगा फ्रेंड्स, कि ये केवल हमारे ही संसद की स्थिति नहीं है, इसलिए आप बहुत दुखी मत होइएगा, ज्यादातर संसदों की यही स्थिति रहती है। लेकिन हम इस आधार पर चुप भी नहीं बैठ सकते कि भैया सभी संसदों में यह हालत है तो फिर हमारे यहां भी है तो क्या बुरा है। नहीं, हमको अपने को तो बेहतर बनाने, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है संसद, डेमोक्रेसी का मतलब ही है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि जाते हैं संसद, एक चौपाल है, बड़ी चौपाल है, राष्ट्रीय चौपाल है, जहां जाकर के लोगों को विचार विमर्श करना है। इसके बाद न्यूज में आपने देखा दोस्तों कि नकदी लेन देन की जो सीमा थी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर एक घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है, कि 2 लाख रुपए तक की केवल नकदी का लेन देन हो सकता है, अगर उससे अधिक का लेन देन है तो आप उस पर जाइए, आप डिजिटल पेमेंट पर जाइए। खासकर जो हम काले धन पर नियंत्रण की बात करते हैं तो उस मैकेनिज्म के तहत हम इसे ले सकते हैं कि इससे काले धन पर थोड़ा नियंत्रण लग सकेगा। और चूंकि अभी वित्त विधेयक के तहत अब इसके संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो आपने न्यूज में सुना कि वो वित्त विधेयक के अंतर्गत ये आएगा, इसमें जो कमी की जाएगी, क्योंकि पहले 3 लाख रुपए थी तो अब ये 2 लाख रुपए पर आ रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट खबर थी मित्रों, वो एचआईवी एड्स के रोकथाम से संबंधित विधेयक को लेकर थी। आपने न्यूज में सुना होगा कि यहां जो एचआईवी एड्स का जो अभी विधेयक पारित हुआ है वो इनफेक्ट मानवाधिकार से संबंधित है। मतलब होता क्या है कि जिनको एचआईवी एड्स हो जाता है तो समाज उनको थोड़ा सा नीची निगाह से देखने लगता है, उनके बहुत से प्रिविलेज कम हो जाते हैं, उनको अलग थलग रखने लगता है, उनके साथ मिलना जुलना एक तरह से हिचक होती है मिलने जुलने में। अगर वो किसी प्लेट खाने थाली में खा रहे हैं तो उनको अलग रख दिया जाता है, जबकि शुरू से प्रचार किया जा रहा है, और ये सही भी है, केवल प्रचार ही नहीं है, कि एचआईवी की बीमारी इस तरीके से नहीं फैलती है। लेकिन अब किसी वजह से समाज में कुछ मान्यताएं बन जाती हैं, तो जो एड्स पीड़ित जो होते हैं वो एक तरीके से इस सामाजिक भेदभाव का यूं कह लीजिए कि शिकार हो जाते हैं। तो कैसे उस भेदभाव को रोका जाए, इसको लेकर के एक विधेयक पारित हुआ है। अभी विधेयक के बारे में डिटेल्स जानने को नहीं मिला है, बस मैं फिलहाल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक इम्पॉर्टेंट विधेयक है, क्योंकि एक तो मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, दूसरा देखिए कि होता क्या है कि हम जो अल्पसंख्यक समुदाय या वीकर सेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो वीकर सेक्शन को आप सिर्फ जाति से जोड़ करके मत देखिए, है ना, उसमें वर्ग भी आ जाते हैं, जैसे महिला चाहे किसी भी जाति की हो वीकर सेक्शन में आ जाती है, ठीक इसी तरह से कुष्ठ रोगी और एचआईवी एड्स के रोगी, ये चाहे किसी भी जाति के हों, कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन चूंकि ये सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं तो इन्हें हम वीकर सेक्शन में ही फिर लेकर चलते हैं। तो चूंकि एचआईवी एड्स का जो अभी विधेयक आया है वो कहीं ना कहीं वो वीकर सेक्शन की कम से जुड़ा हुआ विधेयक है, इसलिए आपके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो मित्रों, न्यूज से बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर के बारे में, कुछ मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। हिंदुस्तान में खासकर उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर के एक आर्टिकल न्यूज आइटम है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और अयोध्या मामले को लेकर के दैनिक भास्कर ने जो एडिटोरियल कमेंट लिखा है, मैं वो एडिटोरियल कमेंट भी आपको दे रहा हूं। दोस्तों, जनसत्ता में खासकर बुजुर्गों को लेकर के एक एडिटोरियल आर्टिकल आया है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक तरह से वीकर सेक्शन में आते हैं, जैसे बच्चे भी वीकर सेक्शन में आते हैं। तो खासकर भारत सरकार एक योजना लेकर के आ रही है जिसमें वृद्धों को उनकी जरूरत के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना, जैसे बैसाखी है, आर्टिफिशियल टीथ है, व्हील चेयर है, श्रवण यंत्र हैं, ये सब उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त मैं और 3-4 आप लोगों को आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें दैनिक भास्कर का सिंधु जल पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठकें हो रही हैं उसको लेकर के एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यूं कह लीजिए कि जटिल तो है ही, तथ्य भी बहुत ज्यादा विस्तार से दिए गए हैं, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और अपनी जरूरत की चीजें ठीक लगें तो 1-2-3 चीजें ही नोट कर लीजिएगा, ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपको ये सतर्क कर रहा हूं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं बताना चाहूंगा और वो ये कि 6th बैच के स्टूडेंट का कुछ मेल आए हैं कि जब वो यहां क्लासेज में थे तो एक HM मिश्रा जी आए थे जिन्होंने अर्बनाइजेशन के बारे में उनसे बातें की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि वो कुछ प्रेजेंटेशन देंगे, तो मैंने वायदा किया था कि मैं वो प्रेजेंटेशन अपने क्लास स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगा। मित्रों, उसको लेकर के आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्वेरीज की हैं, बताना चाहूंगा कि मैंने वो प्रेजेंटेशंस देखे थे। बेसिकली वो प्रेजेंटेशन भोपाल के स्मार्ट सिटी पर थे, भोपाल के अर्बनाइजेशन पर आधारित थे, और उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं निकल रही थी जो एक कॉमन लेवल पर जिसके बारे में बात की जा सके, उसके डेटा सिस्टम सब कुछ भोपाल को पर आधारित है। इसीलिए हमने जानबूझ करके अब जो मिश्रा जी का प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को नहीं भिजवाया है, क्योंकि देखिए जो मैं जिस नीति को लेकर के चलता हूं वह नीति ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ने की चीजें देने की नहीं है, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं लगी। अपने आप में वो उपयोगी है, लेकिन आप सबके लिए वो उस रूप में उपयोगी नहीं है, इसीलिए वो प्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं भेजा जा रहा है। प्लीज इस तथ्य को आप लोग नोट कर लें। तो कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं दोस्तों, जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, उसमें है भाग्यश्री, विजय टोपनावर, हरिओम राय, सरवन जांगीर, माधव सिंह, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, अमित कुमार सैदपुर उत्तर प्रदेश से, मोहित कुमार संभल यूपी से, पीयूष कुमार सिंह छपरा बिहार से और घनश्याम भारद्वाज हिमाचल प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त किया जाता है। नमस्कार।